बैठने का अंदाज, सिटिंग पोस्चर, ये बहुत अहमियत का हामिल है। आमतौर पे कुछ जगहों पर तो इसकी बकायदा तरबियत होती है, गाइडलाइन दी जाती है, जैसे मोटरसाइकिल पर कैसे बैठना है, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कैसे बैठना है, वैसे भी चलने में और बैठते वक्त किस तरीके से पोस्चर होना चाहिए। अगर स्लाउच हो, खम आया हो, तो फिर उसके अंदर रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचने का खदशा रहता है। और फिर ये देखा जाता है कि इंसान जब बैठता है, खासतौर पर माँ बाप के सामने, पीरो मुर्शिद के सामने, या अपने से बड़ी उम्र के अफराद के सामने अपनी क्लास में बैठता है, तो उसका क्या तरीकाकार होता है। यहां पर अमीर अहलुसुन्नत की बारगाह में यह सवाल है कि हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि बैठने का सही अंदाज क्या है। कभी कभार बैठते वक्त जो है इंसान इस चीज का ख्याल नहीं रखता और एक बेअदबी का सा समा बन रहा होता है, और कभी कभार कोई इंसान ऐसा होता है उस बेचारे को कोई तकलीफ होती है, वो किसी खास अंदाज से बैठ नहीं सकता, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये इस खास अंदाज से बैठे, लेकिन अगर वो बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बारे में इरशाद फरमाइए कि बैठने का सही अंदाज कहां कैसे रखा जाए और एक इंसान अपनी इस आदत को कैसे दुरुस्त कर सकता है।
कुर्सी हटा लो तो फिर मैं बताऊं, जहर कुर्सी पर तो बैठना और है अंदाज उसका, और जमीन पर बैठने का अंदाज और है। पहले लोग जमीन पर बैठते थे, अब कुर्सियों पर बैठते हैं। कोई कोई मजबूर हो वो अलग बात है, लेकिन अब तो तकरीबन सभी कुर्सियों पर बैठते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ जने जो बैठने के अंदाज हैं, एक तो है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दो जानू, जिस तरह हम तहिया तो पढ़ने के लिए बैठते ना नमाज में, उस तरह तिबला तिबले की तरफ मुंह करके, मुबारक मुंह, यूं कहिए अपनी जियारत की किबले को गोया मतलब शरफ बख्श रहे, इस तरह आप ये अक्सर बैठने का अंदाज होता। एक अंदाज ये होता कि दोनों घुटने खड़े करके, जिस चीज पर हम बैठे हुए अभी तो वही चीज मतलब है, वो दो घुटने खड़े करके उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं, एहतिबा फरमाते। दोनों ने मैं बैठकर बता नहीं सकता आपको, यानी कि इस तरह दो घुटने खड़े करके वो तशरीफ फरमाते और अपने दोनों हाथों का, यानी कि दोनों पाओं को अपने हाथों के हल्के में ले लेते हैं, इस तरह एहतिबा इसको बोलते हैं। तो ये अच्छा जो चार जानू बोलते हैं जिसको, या चौकड़ी मारकर बैठना बोलते हैं, और हमारे मेमनी में पलाठी या पलाखी वारी ने वेनू या पलोठी बनाकर, ये मैं दीगर जबान वाले सुने, अब इंग्लिश मुझे नहीं पता। तो ये इस तरह बैठना जो है ना, ये भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, चार जानू बैठना या चौकड़ी मारकर जो बैठते इस तरह, ये निशस्त हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मतलब जो मेरी मालूमात में है। तो सबसे अच्छा बैठना वही है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज पर करम फरमाया। बाकी अब साइंस जो भी बोलती है क्या करें, हम किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब तो हैं, मगर तबीबों के भी तबीब हैं, और या साइंसी तौर पर, तिब्बी तौर पर, अखलाकी तौर पर, दुनिया और आखिरत के फायदों वाला जो बैठने का अंदाज है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज, तो इसी को फॉलो करना, दोनों जाके भलाई है। सुन्नत की नियत से बंदा जब जब मौका मिले दो जानू बैठ जाए। दो जानू की इसलिए वजात करता हूँ कि नमाज में जो बैठते ना तहिया तो पढ़ने के लिए, तो वो दो जानू बैठना कहते हैं। खाने में भी दो जानू बैठना भी सुन्नत है, और एक पांव खड़ा करके दूसरा पांव, इन्हें सीधा पांव खड़ा करके, माफ कीजिए सीधा घुटना खड़ा करके दूसरा पांव बिछा कर उस पांव पे बैठ जाना, पंजा है ना उसमें पांव का तलवा, उल्टे पांव का तलवा उसमें बैठ जाना, ये भी एक सुन्नत का अंदाज है खाने का। लेकिन अब लोग चौकड़ी मारकर खाते हैं, जो बैठकर खाते हैं वो चौकड़ी मारकर खाते हैं, वरना तो घर घर कुर्सी टेबल है। वो चौकड़ी मारकर बैठना, बैठकर खाने की सुन्नत होना ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, और इससे ये मुझे याद पड़ता है, पढ़ा है कि पेट निकलता है इस तरह बैठकर खाने से चौकड़ी मारकर। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर आदत चौकड़ी, हम जैसों के पास आते हैं तो बाजू बार जबरदस्ती घुटने और बदलते रहते हैं, और वो दर्द और कर्ब के आलम में बेचारा कोई कोई, वो भी कोई मुरव्वत वाला, सब में मुरव्वत भी नहीं होती और चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं। तो वो ये है कि आदत नहीं है, तो आदत बनानी चाहिए सुन्नत के मुताबिक बैठने की, और सबके सामने तो ये सबको दिखाने के लिए, अकेले में भी, ये माहौल की बात कर रहा हूँ, अपने अवाम की बात नहीं कर रहा, दीनी माहौल में भी ऐसा होता है कि घर पे चौकड़ी मारकर बैठेंगे, हमारे सामने आएंगे थोड़ा ठाउके होकर थोड़ा सेट होकर घुटना खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह इखलास अता फरमाए, अल्लाह पाक रहमत की नजर, अकेले में भी सुन्नत के मुताबिक बैठे, सबके सामने भी सुन्नत के मुताबिक बंदा बैठे, इसमें इंशाल्लाह दोनों जगह की बरकत है। अब क्योंकि वो घर घर कुर्सी बल्कि फर्द फर्द कुर्सी का माहौल बन गया है, अल्लाह की मेहरबानी के अब भी लोग नमाज के लिए आ रहे हैं, वरना ये कि आगे चलकर खुदा जाने क्या होगा। खुतबा जमीन पर बैठकर अब भी सुन रहे हैं जुम्मे का, आते लेट है, शायद बैठ नहीं सकते होंगे तो इसलिए भी बाद लेट आते होंगे, तो वो खुतबा जमीन पर बैठकर ही अभी तक तो मस्जिदों में यही राइज है। कल जाकर उस कुर्सियां तो अगर काफी आ गई है मस्जिदों में, काफी या कुछ ना कुछ आ गई है, लेकिन ये कि ये बस कुर्सी की आदत पड़ गई ना, तो इसलिए वो नीचे बैठ नहीं पाते, इनके पांव डैमेज, घुटने डैमेज, ये बराबर फोल्ड करने में इनको तकलीफ होती है। जैसे मैंने कहा कि सुन्नत के जो चार जानू चौकड़ी मार के बैठता है ना, वो सुन्नत के मुताबिक नहीं बैठ सकेगा, वो बैठेगा तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ उठाकर अगर आदत है भी चार जनों की, तकलीफ उठाकर भी बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, आदत क्या वो गढ़ाई हो जाएगी पाँव की, फिर आपको बैठने में तकलीफ नहीं होगी। शुरू में चलो थोड़ा यूं बदल बदल करके, फिर यह सेट हो जाएंगे आप, नियत साफ मंजिल आसन, इजी लेंगे तो नहीं होगा, सीरियस लेंगे ना कि मुझे करना है, तो इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। अब चूंकि मैंने अर्ज किया कि कुर्सियों की आदत बढ़ गई है, तो बाहर मुल्कों में खासकर माहौल ज्यादा शायद इस तरह का है, तो ये कब कभी जैसे बयान होते हैं ना, अब बयान में कोई मशहूर मुबल्लिग चला गया अपना, तो उनके ये चलते हैं सिलसिला, ये बयानात के जो कुछ ना कुछ क्लिप वगैरह, तो उसमें देखा जाता है कि बाहर मुल्कों में आदत ज्यादा है। एक तो लिबास, बा मुराद कहूं ना मुराद कहूं आप समझ जाएं, एक तो लिबास ऐसा के तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आधे नंगे होकर बिल्कुल कपड़े इस तरह चुस्त तो यूं करके बैठते हैं, पांव खोल के, इनको शर्म मगर नहीं आती किसी को, वैसी हालत हो गई है, तो ये असल बैठ नहीं सकते, चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते। दो जानू अत्तहियातों में जिस तरह बैठते हैं कि बड़ा आजजी वाला बैठने का अंदाज है, ये भी इनको नहीं आता बैठना, तो फिर ये यूं करके बैठे होते हैं बेचारे, जबरन कहरन आ जाते हैं, ये भी कुछ एक तादाद नहीं आती होगी कि यार अपने बैठ नहीं सकेंगे, तो इसी वजह से हमने कई जगह कुर्सियों को जारी किया है, शख्सियात का इस्तेमाल ये वो, अगर इनको बोले जमीन पर ये बिठाते हैं, पता चलेगा जमीन पर बिठा तो या तो जल्दी चले जाएंगे या आइंदा आएंगे नहीं, यार यहाँ बैठ नहीं सकते, तो इसलिए आज नहीं तो कल हो सकता है हफ्तावार इस्तेमाल में भी कुर्सियां शुरू हो जाए, लेकिन अभी नहीं है, जब तक मरकजी मंदिर शूरा आपको ना कहे इजाजत दे, तो ये हालात हो गए, तो बड़ा भोंडे अंदाज में यानी गंदे अंदाज में बैठे होते हैं। यहाँ भी हालत है, ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर मुल्क, यहाँ भी ये गंदे अंदाज में लोग बैठे होते हैं, बल्कि अगर आप मजबूर करेंगे सुन्नत के मुताबिक खाने के लिए बैठो तो बेचारे शर्ट ही मिनी स्कर्ट की तरह होते हैं, तो ये यूं करके बैठेंगे फिर वही दूसरे को बदनिगाह से बचना मुश्किल हो जाएगा, जो मैं कहता हूँ समझ गए होंगे आप। कुर्ता ऐसा वो आधी पिंडली तक सुन्नत है कुर्ता, थोड़ा खुलासा कुर्ता हो तो फिर तो यूं बैठना समझ में आता है कि वो पर्दे में पर्दा हो जाएगा। हम ये तो नहीं कहेंगे सब चादर ले लेके फिरें, तो बहुत मुश्किल है कि चादर भी चादर से पर्दा पर्दे में पर्दा करें, इससे हो सके वो तो बेशक करें, लेकिन ये कम अज कम या तो लिबास ऐसा हो। अच्छा, अब अगर लिबास ऐसा नहीं है और बैठ कर खाना पड़ गया, तो अब फिर ये वही दो जानू अत्तहियातों में बैठकर ही, कि ये भी सुन्नत है, इस सुन्नत के मुताबिक बैठेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो पर्दे में पर्दा करने वाली जो तरकीब है ना, ये किसी हद तक बन जाएगी।
आपने आपने अभी जो बैठने का वो जो लिबास का तस्करा किया ना, एक पहलू की तरफ अगर मजीद, अब मैं जो कहूंगा तो बहुत ज्यादा खुलकर नहीं कह सकूंगा। हमारे यहाँ जो एक पेंट और जो टी शर्ट या शर्ट का जो एक रुझान है, तो आजकल ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि शायद शॉर्ट शर्ट और टाइट शर्ट पहनने का आई थिंक कि ये एक ट्रेंड चला है, और टी शर्ट भी जो है ना वो भी लॉन्ग नहीं होती, शॉर्ट होती है। तो अब जब ऐसे में जब अगर बिलफर्ज वो नमाजी है, जब वो मस्जिद में आते हैं और जब आप सज्दा करते हैं ना, तो हो सकता है कि बाद सूरतों में आपकी नमाज मकरूह तहरीम में हो जाती हो, या इसके अलावा कोई और मसला हो जाता हो,
नमाज ना भी होती हो।
जी नमाज ना भी होती हो, सही फरमाया आपने। तो ऐसी
सूरतों में मुतलकन
नहीं, बिल्कुल बाद सूरतों में,
लेकिन फहमी ना हो जाएगी।
क्या मैं लाइव कितना बोलूँ बाबा,
ध्यान रखो जो समझदार है वो समझ गए, और बस हालात ऐसे है कि आप ज्यादा बोलेंगे ना हम लोग फिर हमारे पास आएंगे नहीं।
जी हाँ,
मैं भी कुछ बोल गया हूँ और मुझे भी अब थोड़ा एहसास हो रहा है कि फिर ये आएंगे नहीं, कि यार ये हमें सुनाएंगे। आप आओ यार, हम हर बार नहीं बोलते ये, अब वो सोबान भाई ने सवाल ऐसा किया तो ये थोड़ा मैंने बोल दिया। हम आप जो भी यानी कि लिबास पहने, जायज लिबास हो शरीयत के मुताबिक पहने, आया करें, आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ दिन सीखेंगे। ये ना वो लिबास के चक्कर में या बैठने के चक्कर में कि हम यूं बैठेंगे तो ये हमको बोलेगा सीधा बैठ, तो ये हम बोलते नहीं है। और मोबाइल लेकिन को भी मेरी ताकीद है कि बिल्कुल नहीं चढ़ा करो, ये पहले मैंने ये नोट किया ना, मुझे तजुर्बात हुए हैं, तो दाढ़ी के लिए मजबूर करना, दाढ़ी रखो तो ना थोड़ी बोलेगा, बिल्कुल रखूंगा, चेहरे पर भी रखूंगा, दिल में भी रखूंगा, और बोलो, फिर आइंदा वो गली बदल देगा आपको देख के, ये भी खींच के निकालेंगे मेरी दाढ़ी, ऐसे नहीं होता। पहले नमाज का बोलना चाहिए कि नमाज फर्ज है, और फिर यह नमाज का जिसको बोलेंगे ना वो आपसे बदजन भी नहीं होगा, अपने आप को ही मलामत करेगा, जबकि है मुसलमान, तो उसको कौन सा मुसलमान है जिसको पता नहीं कि नमाज फर्ज है, तो वो नमाज पर आ जाएगा तो इंशाल्लाह और भी मंजिलें आसान हो जाएंगी, और भी बहुत सारे काम है जो हमें मुसलमानों को बताने हैं, या तो दाढ़ी रखवाते थे या इमामा बंधवाते थे, यानी मेरे पास ले आते थे मुलाकात के लिए, लाइनें लगती थी, तो मुझे चूंकि बहुत तजुर्बा है, तो चाहे वो शेव्ड हो, चाहे छुट्टी दाढ़ी वाला हो, चाहे पूरी दाढ़ी वाला हो, मुझे पीछे खड़े होकर उसके पीछे रखते, इसको आगे बढ़ाते थे लाइन में, वो मुझे इशारा करते थे इसको इमामा बंधवाओ, इसको इमामा बंधवाओ, या किसी को शेव्ड को इमामा भी बंधवा देते हैं लोग, बंधवा के फिर मतलब मुलाकात के लिए, तो यार ये कितनी देर बांधेगा, कितने दिन नहीं, कितनी देर बांधेगा, जहां आपकी नजर फिरी उसका इमामा चला गया, मुफ्त में इमामा मिल जाता है तो ये बांध लेते हैं, फिर ऐसे लोग थोड़ा यूं होते लगे, फिर इससे पकड़ के इमामा खरीद दिया गया, यार इमामा बंधवाना है, अरे वाह बांध दिया, उसको एक कपड़ा हो गया, काम आ जाएगा घर में, इमामा थोड़ी बांधेगा यार, पेंट शर्ट शर्ट इन शेव्ड, और दुनियादारी के धंधे दफ्तरों में काम करना, और तरह तरह के ये बेचारा इमामा कैसे बांधेगा, दाढ़ी रखवा लो तो भी, मगर दाढ़ी में पहले नमाज तो पढ़ाओ, इसको दाढ़ी वाजिब है बेशक, अगर जन्ने गालिब है कि आपके बोलते ही आपके समझाने से रख लेगा तब तो समझाना वाजिब होगा, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, खाली उसके पीछे लग जाते हैं तो बंदा भी भाग जाता होगा, बाज ऐसे करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
यही बात क्या आप इस्लामी बहनों को भी उनके साथ,
इस्लामी बहनों को ज्यादा समझाने की जरूरत है।
अच्छा,
लेकिन समझाया, क्लिप भी जारी किया था मैंने कि वो इस तरह फिर कोई मॉडर्न औरत लड़की आ गई, बेपर्दा तो बेपर्दगी तो क्या करें, है तो यकीनन गुनाह है, उसको गुनाह ही कहेंगे, इतनी आम है कि अब वो दीन की बात सुनने के लिए किसी ने उसको फोर्स किया या कोई नेकी की दावत दी, समझ में वो आई, अब आई बेपर्दा है, आप इसको एक स्थाई वे उधर से खींच रही है, स्थाई वे इधर से खींच रही है, दूसरी इशारे कर रही है, बुरका बांधो, मदनी बुरका पहन लो, तो वो तो बेचारी हो सकता है मुरुबत ना कर, बिल्कुल बिल्कुल मैं अब्बू को बोलूंगी कि मुझे बुरका फौरन सिलवा दें, और बिल्कुल इमरजेंसी नाफिस कर दूंगी मैं, اور پھر یہ کہ آپ پر ایمرجنسی نافذ ہوگی، آئندہ شاید آئے گی نہیں، یا جھگڑے کرے گی، یا گھر میں جھگڑے کرے گی، یا آپ کے پاس نہیں آئے گی. صرف طالبات بھی بیچاریاں پڑھتی ہیں جامعات المدینہ میں، لیکن سر سب تھوڑی پردے والی ہوتی ہیں، تو ان کو باجیوں کا مجبور کرنا بھی بعض اوقات بھگا دیتا ہوگا. تو اس طرح کا میں نے پھر پتا چلا نا، مجھے شکایت ملی کہ اس طرح ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے، میں نے پھر کلپ جاری کیا تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے فرق پڑا ہے، اس کے بعد کوئی شکایت میں نے سنی نہیں ہے. اس کو بھی سال دو سال تو ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو، ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئے ہوں.
سمجھانے کی
ماشاء اللہ نہیں، استائی بہنیں ہماری جو ذمہ دار ہیں نا، ان میں ایک تعداد ہے جو بہت سمجھدار ہے الحمد للہ. یہ خود بھی یہ ایسا کرتی بھی نہیں ہوں گی، وہ جذبات استائی بہنیں جو نئی نئی ہوتی ہیں یا تھوڑی ان سمجھ ہوتی ہیں، یہ کرتی ہوں گی ایسا کہ یار آنے دیا جائے بس، اس کو نہ بے پردی پر ٹوکا جائے، نہ اس کو شاپنگ پر ٹوکا جائے، نہ اس کو فلمیں ڈرامے پر ٹوکا جائے، اس کو آنے دیں، اس کو نماز کی بات کریں، اور اس کو مطلب محبت دے کہ یہ قریب آ جائے گی، یہ پھر سب مانے گی اور کرے گی. ابھی بولا گیا تو یہ مانے گی کیا، خالی ہاں بولے گی پھر ہاتھ سے جائے گی، نہ وہ ہاتھ میں رہے گی بات، نہ یہ بات ہاتھ میں رہے گی، نہ یہ سدھرے گی، نہ سدھرنے کی کوششوں پر آئے گی، یہ تو مجھے ملانی بنا دیں گے، ہمارا خاندان میں یوں ہے، ہمارے ماحول یوں ہے. اب واقعی شادیوں میں ایسا گندا ماحول ہوتا ہے آج کل کے، خدا کی پناہ. اب اس کو آپ بولو شادیوں میں بھی مت جاؤ، ادھر بھی مت جاؤ، ادھر بھی مت جاؤ، بات تو صحیح ہے کہ جہاں یہ گندگی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اب آپ روکو گے تو پھر وہاں تو جائے گی ہے، آپ سے بھی ہاتھ سے نکل جائے گی نا، مشکل ہی ہے. یہی صحیح بھائیوں حال ہوتا ہے. میں ایک پرانی مثال دیتا ہوں کہ اخبار کا کوئی مالک، آدھا مالک تھا پارٹنرشپ، پاورفل آدمی لگ رہا تھا، اور اخبار بھی یعنی کہ یوں مشہور اخبار تھا اور بہت بکنے والا اخبار تھا. اس کو میں نے دعوت دی اجتماع کی، تو اس نے یار کیا اجتماع میں آئے، ایک بار آیا تھا میں، تو ایک بولتا مجھے داڑھی رکھو، میں کیا داڑھی رکھوں گا، بولے میرے ماحول ایسا ہے. پھر مجھے داڑھی کے لیے بولنے لگے شاید، وہ اصرار کیا، وہ نعرے پہ نعرے لگا رہے تھے، بولا یار میں تو مجھے تو پتا نہیں آیا، یعنی وہ تھا مطلب اس کا چھوٹ تھا نا زبان، مجھے بھی جواب دے دیا نا اس نے میں نہیں آؤں گا. حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جو آدمی بالکل یعنی کہ چھوٹ میں اس طرح مجھے بول دے رہے، بول دیا اس نے. ویسے تو کتنے ہوں گے جو بھاگ جاتے ہوں گے. ناروں کی تو شکایتیں پہلے بھی تھی ہمیں، ناروں پر نعرے، دے نعرے، دے نعرے. تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے موقع کی مناسبت سے، بات بات میں نعروں سے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعد لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے. جیسے ابھی ایک مثال، جیسے کئی ہوں گے نعرے نہیں سمجھ میں آتے ہیں کہ یار کیا بات بات ہے، نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو نعرے کم کام زیادہ، اور جہاں نعرے زیادہ لگتے ہیں وہاں کام ہو سکتا ہے کم ہو. پنجاب میں وہ نعرے ہی نعرے، دے نعرے، دے نعرے، وہاں مطلب خطیب اعظم سے تو کوئی کم ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. اشتہار میں کیا ہوتا ہے، والے اپنے محلے کی مسجد کا خطیب ہو، ٹھیک ہے خطیب اعظم ہے، اور جو اناؤنسنگ کرتا ہے اس کو اب تو کیا بولتے ہیں، اب اس کو نقیب بولتے ہیں. تو نقیب صاحب بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ کچھ تو بولیں گے بولیں گے بولیں گے بلا تاخیر، اب پھر کچھ بولیں گے، پھر آخر کار تاخیر کرنے کے بعد بلا تاخیر بلائیں گے. یہ بھی میں نے پنجاب میں ماحول دیکھا، اس لیے معذرت کے ساتھ. تو یہ کہ دعوت اسلامی کا انداز بہت پیارا انداز ہے، محبت بھرا انداز، پیار بھرا انداز، نرم لہجے میں ہم کو لوگوں کو قریب کرنا، وحشت نہیں دلانی کہ ہم سے بھاگ جائیں، ہمیں نہ سنیں، ہمیں سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ لگیں گے. کیا اس طرح بھائی، کیا اس طرح میں نے سب کے لیے میں نے الحمدللہ جو بن پڑا یہ مدنی پھول پیش کیے. اللہ آپ سب کو قبول کرنے کی سعادت بخشے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کرسی کے بغیر نہیں بیٹھتا، میری مجبوری ہے، نماز کی کرسی پہ پڑھتا ہوں، کوئی یہ نہیں بولے خود تو بیٹھتا، میں بیٹھ تو جاؤں گا زمین پر، جوں تو کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نماز بھی ایک سجدہ تو کر لیتا ہوں میں کھڑے کھڑے. ابھی چاند رمضان کا
جی، میں وہ کہنے والا تھا سجدہ شکر پر، آپ
نماز رمضان شریف چاند دیکھا تھا ہم نے، تو میں خوشی میں جذبے میں وہ کر لیا حقیقی سجدہ الحمدللہ، وہ کر لیا. پھر میں نے بلایا کہ اٹھاؤ میرے کو، उठ नहीं सका, उठ कर यूं तो मैं यूं बैठ गया अपने हिसाब से, या सज्दे में से ही उठाया था मुझे।
नहीं, आप उठाने की कोशिश की गई उसी तरह जैसा आप फरमा रहे, पहले तो आपने सज्दा शुक्र किया, उसके बाद उठा तो आपने फरमाया यार यूं नहीं होगा, मुझे बिठा दो फिर उठाओ। बहुत ठीक ठाक, ठीक ठाक आजमाइश।
अब तो ये इसलिए कोई ये ना समझे क्या, हमको बोलता जमीन पे बैठा, खुद सोफे पे चढ़ के बैठा। मेरे पास इस तरह के फर्नीचर है भी नहीं, ये मेरी जरूरत है सोफे की। सोफे पर बैठता नहीं मैं, एक अरसे तक तो बगैर टेक लगाए वो स्टूल पर नमाज पढ़ता रहा, लेकिन अब कुछ दिन से या कुछ हफ्तों से कुछ प्रॉब्लम है मुझे। अब मैं इसकी डिटेल बताना नहीं चाहता कि मतलब अब मजबूरन में प्लास्टिक की कुर्सी जो नॉर्मल होती है अपनी उस पर बैठ रहा हूँ, तो उससे मुझे अब फिलहाल वो मुआफिक है, उस पर बैठ रहा हूँ, सोफे पे नहीं। सोफा ये बयान के लिए बैठता हूँ, क्या रखा हुआ कभी इस पे वैसे ही बैठ गए तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा मामूल नहीं है सोफे का। मैं जो अपना काम करता हूँ तहरीरी काम, उस पे भी सोफा नहीं रखा हुआ है, पहले सोफे पर भी किया काम लेकिन सोफा नहीं है, कुर्सी है। बहरहाल ये मैं जो भी करूं, मैं जो कह रहा हूं वो अगर आपकी समझ में आता है जिसको अपना ले, तो वैसे भी कौन सा मैंने जबरदस्ती किसी को मनाना है, और मेरी सुनकर कौन सा आपकी आदत निकल जानी है। वो तो कोई लाखों में होगा जो एकदम सीरियस ले ले, या वो जान कुर्बान करने का नारा लगाने वाला भी शायद भाग जाएगा, जान भी कुर्बान है, फरमान पर जान भी कुर्बान है, खाली अल्फाज का खेल है, ऐसे कहने से जान थोड़ी कुर्बान हो जाती है।
बाबा, जो कुर्सी के ताल्लुक से जो सवाल सोबान भाई ने किया है, इसमें भी दरखास्त यही है कि कुर्सी की खुद एक, जैसे कुर्सी कुर्सी है ना, आप खुद फरमान दुनिया में कुर्सी कुर्सी है, तो कुर्सी की एक अपनी साइंस है, कुर्सी का एक अपना एक सब्जेक्ट है। जिस तरह बाबा ये
38 मिनट थी,
हाँ समझिए इंशाल्लाह करो,
अच्छी याद नहीं आता
ना ना,
हालांकि चुमो 11:30 हो गया, कहा था याद दिलाया था, इनको भी याद था मैं 11:30 बजे आज है, लेकिन वो बस
ये मौजू मेरे का। तो ये कुर्सी के ताल्लुक से मैं थोड़ा सा ये अर्ज कर दूं, जिस तरह कपड़ों में साइजें होती है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज छोटी बड़ी, तो इसी तरह कुर्सियों का भी ये पूरा हिसाब किताब होता है, कितना इंच ऊंची होनी चाहिए, इसका पूरा मेजरमेंट होता है। अगर आप कुर्सी पर बैठना ही है और आप कुर्सी पर बैठने पर हैं, तो फिर कुर्सी को उसके तरीकेकार के मुताबिक लें, ताकि कुर्सी से आपके पांव में, आपकी कमर में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह की चीजें ना हो, प्रॉब्लम हो जाए। कि बास कुर्सियों की वजह से लोगों की डिस्कें खराब हुई हैं, लोगों के स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम हुए और लोगों की रीढ़ की हड्डियों में मसाइल पैदा हुए हैं, और किसी के रानों में मसाइल पैदा हुए हैं, किसी के घुटनों में मसाइल पैदा हुए हैं। तो कुर्सी के ताल्लुक से भी मालूमात लेकर और अच्छे अंदाज से लें। बाज कुर्सियां झुलती रहती हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, बैठो ना तो फिर झुलती रहती हैं, और उसमें मतलब कि काफी चाल होती है, इससे भी आपके बदन को ये राहत पहुंचने के बजाय जहमत पहुंचने का अंदेशा है। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।